नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति गाजा पट्टी के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के वास्ते 20 ट्रकों को अनुमति देने के लिए गाजा में अपनी सीमा को खोलने पर सहमत हो गए हैं। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इसराइल की अपनी यात्रा के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से बात की, जहां देश के नेता मानवीय सहायता की अनुमति देने पर सहमत हुए। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल ने गाजा पट्टी को सील कर दिया था और यहां के 23 लाख लोगों के लिए भोजन, पानी, दवा और ईंधन की आपूर्ति को रोक दिया। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि आगामी दिनों में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंच पाएगी। अमेरिका में इस सप्ताह आयोजित पहले क्वाड निवेश एवं प्रौद्योगिकी संवाद में हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक समृद्धि एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम संसाधनों और उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश के अवसर पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस ने बुधवार को ये जानकारी दी। बैठक सोमवार को व्हाइट हाउस में हुई और बैठक को संबोधित करने वालों में राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की निदेशक लेल ब्रेनार्ड और वाणिज्य सचिव जीना रेमोंडो शामिल थी। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को और देशों से आए 40 से अधिक व्यावसायिक अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच बढ़े हुए उच्च मानक वाले सीमा पार निवेश को लेकर निजी पूंजी उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के दूतावासों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को उत्तर कोरिया की यात्रा की। इस यात्रा के कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि प्योंगयांग ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए रूस को युद्ध सामग्री हस्तांतरित की है। रूस के सरकारी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित फुटेज में प्योंगयांग में भारी बारिश के बीच लोग लावरोव का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लावरोव बीजिंग की यात्रा पर गए थे, जो यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में रूस को चीन का समर्थन रेखांकित करता है। प्योंगयांग पहुंचने के बाद लावरोव ने कहा कि ये यात्रा उन समझौतों को लागू करने पर चर्चा करने का अवसर है, जिन पर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सितंबर में रूस के वोस्तोचन कोस्मोड्रोम में मुलाकात के दौरान हस्ताक्षर किए थे। इसराइल से लौटने के एक दिन बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन बृहस्पतिवार को इसराइल के खिलाफ हमास के हमलों और रूस यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिका के रुख को लेकर देश को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस ने बुधवार को ये जानकारी दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जीन पियरे ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन कल इसराइल के खिलाफ हमास के आतंकवादी हमलों और यूक्रेन के खिलाफ रूस के संघर्ष पर अमेरिका के रुख को लेकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा, यह संबोधन स्थानीय समय अनुसार रात 8 बजे राष्ट्रपति के कार्यालय ओवल ऑफिस से दिया जाएगा। बाइडेन के इसराइल से लौटने के दौरान व्हाइट हाउस ने यह बयान जारी किया। इसराइल और हमास के बीच पिछले 13 दिनों से जंग जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी आज इसराइल पहुंचेंगे। जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका पहले ही अपना सैन्य बेड़ा इसराइल के लिए रवाना कर चुका है। इस बात से रूस की चिंता बढ़ गई है। रूस ने भी ब्लैक सी में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी हैं। रूस की किंजल मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा है। यानी कि यह मिसाइल जब फायर की जाती है तो इसकी स्पीड के कारण कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम से ट्रैक नहीं कर सकता। इस मिसाइल की रफ्तार 6,100 से 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दावा किया जाता है कि यह मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें एक बार में 1000 पाउंड के विस्फोटक या 500 किलोटन के परमाणु बम लोड किए जा सकते हैं। ये मिसाइल 1500 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। जापान एयरलाइंस को ज्यादा सामान से नहीं बल्कि सूमो पहलवानों के ग्रुप के वजन के रहते अलग से एक विमान की व्यवस्था करनी पड़ी। ये पहलवान अमामी द्वीप पर एक राष्ट्रीय खेल महोत्सव में भाग लेने के लिए टोक्यो और ओसाका से यात्रा कर रहे थे। हर पहलवान का वजन लगभग 120 किलो होने के कारण जापान एयरलाइंस को एक अतिरिक्त उड़ान भरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस विमान में कुल 27 एथलीटों के दो ग्रुप्स को 12 अक्टूबर को अलग अलग उड़ान भरनी थी, एक टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे से और दूसरा ओसाका के इटामी हवाई अड्डे से। लेकिन हर पहलवान का वजन लगभग 120 किलो होने की वजह से एयरलाइन परेशानी में पड़ गई। द गार्जियन के मुताबिक एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने क्षेत्रीय समाचार पत्र मिनामी निप्पॉन शिंबुन को बताया इस विमान पर वजन प्रतिबंध के कारण विशेष उड़ानें संचालित करना हमारे लिए बेहद असामान्य है और ऐसा पहले भी होता रहा है। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह के पहलवानों की यात्रा समय समय पर होती रहती है और ये एक आम बात हो गई है। कई बार पहलवानों का एक दूसरे के बगल में बैठकर आने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।